नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं।
जी,
पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक 21वीं सदी का गंगा अवतरण।
हाँ,
ये 1988 से 90 के बीच लिखी गई थी। उनकी जो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला है उसका हिस्सा है ये।
बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव ने, आपको पता है, वंदनीय माता जी से कहा भी था कि मेरा भौतिक शरीर शायद न रहे, पर मेरा ज्ञान शरीर, मतलब यही साहित्य, ये हमेशा जीवित रहेगा और इसको जन जन तक पहुंचाना है।
सही कहा। तो एक तरह से हम आज उनके उसी ज्ञान शरीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जी बिल्कुल।
तो चलिए फिर देखते हैं कि इस पुस्तक में पूज्य गुरुदेव 21वीं सदी के लिए क्या क्या संदेश दे रहे थे, जिसे उन्होंने कहा कि ये ज्ञान की एक नई गंगा का अवतरण है। शुरुआत करते हैं कि उस समय की समस्याएं क्या थी, पूज्य गुरुदेव उनकी जड़ कहाँ देखते थे।
देखिए, पूज्य गुरुदेव का मानना था कि विज्ञान ने, मतलब पिछली कुछ सदियों में, तरक्की तो बहुत की,
बहुत ज्यादा।
हाँ वो तो है, पर उसका सही इस्तेमाल वो नहीं हो पाया। नतीजा क्या हुआ? प्रदूषण देख लीजिए, विनाश करने वाले हथियार बन गए और समाज में, मतलब नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई। जनसंख्या का बोझ अलग से,
साधन तो बढ़ गए पर इंसान
ज्यादा विपन्न, ज्यादा उद्विग्न हो गया, अंदर से खालीपन बढ़ गया।
ये बात तो आज भी मतलब उतनी सच लगती है।
बिल्कुल।
पर इसका मूल कारण क्या सिर्फ बाहरी चीजें दोषी थीं, सिस्टम?
नहीं, यही पूज्य गुरुदेव की दृष्टि बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे असल समस्या बाहर नहीं है।
अच्छा,
तो कहाँ? अंदर है। विचार विकृति, मतलब हमारी सोच का, हमारी समझ का गलत दिशा में चले जाना, और आस्था संकट, जो सही मूल्य हैं, सिद्धांत है, उनसे विश्वास उठ जाना।
ओ, विचार विकृति और आस्था संकट।
हाँ, सारी समस्याओं की जड़ उन्होंने यही बताई। ये सिर्फ कोई सोशल या पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल डायग्नोसिस था, एक आध्यात्मिक निदान।
समझ गया। तो अगर समस्या विचारों में है, सोच में है, तो फिर उपाय भी वहीं खोजना होगा, है ना?
एकदम सही। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने उस समय की सबसे बड़ी जरूरत बताई, विचार क्रांति।
विचार क्रांति,
हाँ। और ये सिर्फ, मतलब, अच्छी बातें सोचना नहीं है, इसका अर्थ था जनमानस का परिष्कार करना।
परिष्कार, प्यूरिफिकेशन जैसा।
हाँ, मन को साफ करना, गलत और जो नुकसानदेह सोच है उसके खिलाफ एक वैचारिक, इंटेलेक्चुअल लड़ाई छेड़ना, और मानवीय गरिमा, मानवीय मूल्य जैसे सत्य, प्रेम, न्याय, इनको दोबारा स्थापित करना।
और इसको उन्होंने कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि इस युग का महाभारत कह दिया।
बिल्कुल। मतलब एक बहुत बड़े स्तर का वैचारिक और नैतिक संघर्ष, जिससे नया युग आएगा।
वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है।
जी, और इस क्रांति को लाने के लिए उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। खुद अपना जीवन 15 साल की उम्र से सोचिए, 80 साल की आयु तक,
हाँ,
अपना पूरा जीवन, अपनी साली निजी संपत्ति, सब कुछ समाज के लिए, लोक मंगल के लिए लगा दिया, एक आदर्श बन के दिखाया।
साथ ही विचारों को फैलाने के लिए कितने माध्यम अपनाए, अखंड ज्योति जैसी पत्रिकाएं।
जी, और लगभग 1500 पुस्तकें लिखी, अनगिनत प्रवचन दिए,
और फिर शांति कुंज की स्थापना हरिद्वार में।
हाँ, शांति कुंज, वो सिर्फ एक आश्रम नहीं बना, वो एक शक्तिपीठ बना, जहाँ ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से समर्पित लोक सेवी तैयार होते हैं।
आत्मदानी और वानप्रस्थी, है ना?
जी, आत्मदानी यानी जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज सेवा में लगा दिया, और वानप्रस्थी जो गृहस्थ जीवन के बाद अपना समय, अपना अनुभव समाज को देते हैं। ये सब लोग स्वावलंबन और सेवा का जीवन जीते हैं।
और शांति कुंज में ही वो ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान भी है, जहाँ विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने का काम होता है। ये भी बहुत अनूठा है।
बिल्कुल। और आम जन तक पहुँचने के लिए एक बहुत सरल, सुलभ तरीका दिया, दीप यज्ञ।
हाँ, दीप यज्ञ,
छोटे छोटे दीपकों के यज्ञ, इनके माध्यम से सामूहिक चेतना जगाना, ये बहुत प्रभावी माध्यम बना, घर घर तक पहुंच गया।
अब जरा 21वीं सदी की विजन पर आते हैं। पूज्य गुरुदेव ने युग संधि काल की बात की थी, 1989 से 2000 तक, इसका क्या मतलब था?
युग संधि मतलब दो युगों का मिलन। जैसे सुबह होने से पहले एक समय होता है ना, अंधेरा छट रहा होता है, रोशनी आ रही होती है,
भोर का समय,
वैसा ही पूज्य गुरुदेव का मानना था कि ये दौर बड़े बदलाव का होगा, जिसमें पुरानी गलत चीजें, जो अवांछनीयताएं हैं, वो खत्म होंगी, और नई अच्छी प्रवृत्तियां, सत प्रवृत्तियां, उनका उदय होगा। थोड़ी उथल पुथल होगी, पर ये जरूरी है।
और इस संधिकाल के बाद 21वीं सदी कैसी होगी उनके अनुसार?
एक उज्ज्वल भविष्य, पूज्य गुरुदेव बहुत आशावान थे, हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी समता पर, एकता पर और मानवीय मूल्यों पर आधारित होगी।
अच्छा।
उन्होंने कई भविष्यवक्ताओं का भी जिक्र किया, जैसे नेस्ट्राडेमस, जीन डिक्सन, महर्षि अरविंद, जो ये कहते थे कि इस बदलाव में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी।
भारत की अग्रणी भूमिका और इस उज्ज्वल भविष्य का एक खास पहलू नारी जागरण भी था, सही कहा?
हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव ने इसे उस समय का एक महान आंदोलन कहा। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा, उनके स्वावलंबन और समाज में बराबरी की भागीदारी पर बहुत जोर दिया।
और कुरीतियों का विरोध भी किया, जैसे खर्चीली शादियाँ।
जी बिल्कुल। उनका मानना था कि नारी शक्ति अगर नहीं जागेगी तो समाज का उत्थान अधूरा रह जाएगा।
अंत में पूज्य गुरुदेव सबसे एक आह्वान भी करते हैं, कपील।
बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये जो नया युग लाने का काम है, ये दैवीय योजना तो है, पर इसमें सबका सहयोग चाहिए, अकेले नहीं होगा।
सहयोग किस तरह का?
समय दान और अंशदान, मतलब अपने समय का कुछ हिस्सा और अपने साधनों का, अपनी कमाई का कुछ अंश इस अच्छे काम के लिए लगाना। सबका छोटा छोटा योगदान मिलकर बड़ा बदलाव लाएगा।
और उनका ये भी विश्वास था कि ये सिर्फ हमारी कोशिश नहीं है, इसके पीछे कोई और शक्ति भी है।
हाँ, उनका दृढ़ विश्वास था कि ये परिवर्तन दैवी सत्ता, जिसे वे महाकाल कहते थे, समय की वो अदृश्य शक्ति, उसकी योजना से हो रहा है, और शांति कुंज इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र, एक आध्यात्मिक गंगोत्री की तरह काम करेगा।
और वो युग संधि, महापुरुष चरण की बात भी थी।
जी, वो 12 साल का एक विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान था जो 2001 में पूरा हुआ। उनका मानना था कि इससे युग परिवर्तन की प्रक्रिया को बहुत बल मिलेगा।
और सबसे अहम बात शायद ये कि उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगर वो शरीर में ना भी रहें।
हाँ, उन्होंने कहा कि ये काम रुकेगा नहीं, उनके सूक्ष्म शरीर और उनके द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है उससे ये काम चलता रहेगा।
तो अगर हम संक्षेप में कहें, 21वीं सदी का गंगावतरण सिर्फ एक पुस्तक नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक उज्ज्वल भविष्य का घोषणा पत्र है, एक आह्वान है, एक ऐसी सदी की आशा जहाँ ज्ञान और विवेक की गंगा बहे और उसकी नींव होगी विचार क्रांति और सबका सामूहिक पुरुषार्थ, सबकी मेहनत।
और ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है। पूज्य गुरुदेव ने जिस विचार क्रांति की बात आज से 30-35 साल पहले की थी, आज हम व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर उसमें कहाँ खड़े हैं?
हाँ, ये सवाल तो है।
और क्या आज की दुनिया में इतनी सारी चुनौतियों के बीच भी हमें उस उज्ज्वल भविष्य के कुछ बीज, कुछ अंकुर कहीं फूटते हुए दिख रहे हैं? ये विचार करने वाली बात है।